एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये लिखी तो गई थी लगभग 2 दशक पहले, पर इसकी बातें मुझे लगता है आज शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं।
हाँ बिल्कुल, किताब का नाम है डैनियल एच पिंक की अ होल न्यू माइंड, और ये किताब एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है।
क्या सवाल?
यही कि क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में सिर्फ तर्क विश्लेषण, मतलब वो जो लेफ्ट ब्रेन वाली सोच कहते हैं, क्या वो काफी है?
अच्छा,
और पिंक का जवाब है शायद नहीं। वो कहते हैं कि हम एक नए दौर में कदम रख रहे हैं, एक नया युग जिसे वो कॉन्सेप्चुअल एज कहते हैं, हिंदी में शायद वैचारिक युग।
हाँ, वैचारिक युग कह सकते हैं। और ये बदलाव आ क्यों रहा है? पिंक इसके पीछे 3 बड़ी ताकतें बताते हैं। पहली, प्रचुरता, मतलब अबंडेंस, हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं। दूसरी, एशिया, भारत और चीन जैसे देशों का बढ़ता असर, खासकर ज्ञान आधारित कामों में, जहां बहुत सारा काम कम लागत पर हो रहा है।
सही कहा।
और तीसरी, स्वचालन, ऑटोमेशन, मतलब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, जो बहुत सारे तार्किक काम अब हमसे बेहतर कर सकते हैं।
तो आज इसी पर जरा गहराई से बात करेंगे कि अगर पुरानी स्किल्स, वो लेफ्ट ब्रेन वाली, अब उतनी काफी नहीं है, तो फिर भविष्य में क्या चलेगा? कौन सी नई योग्यताएं हमें आगे ले जाएंगी?
हाँ, और पिंक के हिसाब से ये वो क्षमताएं हैं जिन्हें हम अक्सर राइट ब्रेन से जोड़ते हैं, जैसे क्रिएटिविटी, सहानुभूति, बड़ी तस्वीर देख पाना, और हाँ, जिंदगी में अर्थ ढूंढना।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं।
हाँ, लेकिन किताब में गोता लगाने से पहले जरा लेखक के बारे में बात कर लें, डैनियल पिंक।
हाँ जरूर। दिलचस्प बात यह है कि वो कोई मतलब मनोवैज्ञानिक या न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं है, वो एक लेखक है, विचारक है, जो काम, बिजनेस और हमारे व्यवहार के भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं।
और उनकी बैकग्राउंड भी थोड़ी अलग है ना?
बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका के ये लॉ स्कूल से डिग्री ली, काफी प्रतिष्ठित हैं वो, पर उन्होंने वकालत नहीं की।
अच्छा, तो फिर क्या किया?
वो राजनीति में गए और काफी समय तक पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर के मुख्य भाषण लेखक भी रहे।
अरे वाह, तो इसका मतलब उन्हें पॉलिसी और बिजनेस दोनों की अच्छी समझ होगी।
हाँ, और शायद यही बात उन्हें खास बनाती है। वो अलग अलग फील्ड से, जैसे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, समाज, इनके मुश्किल आइडियाज को लेते हैं और उन्हें आपस में जोड़कर सरल बना देते हैं, समझने लायक।
बिल्कुल, वो उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने ये पहचाना कि दुनिया अब सिर्फ लॉजिक और एनालिसिस से आगे बढ़ रही है, कि अब रचनात्मकता और भावनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं।
और अ होल न्यू माइंड उनकी इसी काबिलियत का एक बेहतरीन नमूना है।
तो अब आते हैं किताब पर, अ होल न्यू माइंड, इसका निचोड़ क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हैं पिंक?
देखिए, ये किताब एक तरह से एक चेतावनी भी है और एक गाइड भी। ये कहती है कि हम सूचना युग से बाहर निकल रहे हैं, वो युग जहां डेटा और लॉजिक का बोलबाला था।
हाँ, इन्फॉर्मेशन एज,
जहां कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर, वकील, एमबीए वाले लोग, ये सब हीरो थे, वो लोग जो विश्लेषण करने में, तर्क करने में, चीजों को स्टेप बाय स्टेप करने में माहिर थे।
बिंकिसी को रूपक के तौर पे लेफ्ट ब्रेन या एल डायरेक्टेड सोच कहते हैं।
ये स्किल्स आज भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये बेकार हो गई।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन अब ये अकेली काफी नहीं है।
और क्यों काफी नहीं है? यहीं पर वो 3 बड़ी ताकतें आती हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, प्रचुरता, एशिया और ऑटोमेशन।
हाँ, ये तीनों मिलकर उन पारंपरिक लेफ्ट ब्रेन स्किल्स के दबदबे को कम कर रही हैं।
जरा इनको खोल के समझते हैं। प्रचुरता, अबंडेंस, इसका मतलब है कि पश्चिमी देशों में और अब तो भारत जैसे देशों के भी कई हिस्सों में लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। अब लोगों को सिर्फ मतलब काम चलाऊ चीजें नहीं चाहिए। उन्हें ऐसी चीजें चाहिए जो सुंदर हों, जिनमें कोई कहानी हो, जो उन्हें अच्छा महसूस कराएं, जो उनके जीवन को थोड़ा और मतलब दे। पिंक मजाक में डिजाइनर टॉयलेट ब्रश का उदाहरण देते हैं।
हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो, मतलब डिजाइन अब लग्जरी नहीं रही।
बिल्कुल, एक आम उम्मीद बन गई है। फिर दूसरा पॉइंट है एशिया।
हाँ, आउटसोर्सिंग वाली बात।
सही, भारत, चीन, फिलीपींस जैसे देशों में करोड़ों पढ़े लिखे कुशल लोग हैं, और वो कई लेफ्ट ब्रेन वाले काम, जैसे सॉफ्टवेयर कोडिंग, अकाउंटिंग, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना, पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम लागत पर कर सकते हैं।
हाँ, पिंक ने वो बैंगलोर के रेडियोलॉजिस्ट का उदाहरण दिया था जो अमेरिका के एक्सरे पढ़ते हैं।
बिल्कुल, तो इससे उन विकसित देशों में इन कामों की कीमत और महत्व थोड़ा कम हो रहा है, और तीसरा है ऑटोमेशन,
यानी मशीनें और सॉफ्टवेयर।
हाँ, एआई, सॉफ्टवेयर, ये सब अब कई नियम आधारित लॉजिकल काम इंसानों से बेहतर कर सकते हैं। टैक्स भरना हो, कानूनी दस्तावेज खंगालने हो, शेयर बाजार का विश्लेषण करना हो, मशीनें ये सब तेजी से और बिना थके कर सकती हैं।
तो जो लोग सिर्फ यही काम करते थे, उनके लिए तो ये एक मतलब चिंता की बात है।
बिल्कुल। तो सवाल उठता है, रास्ता क्या है? यही पिंक राइट ब्रेन या आर डायरेक्टेड क्षमताओं की बात करते हैं।
वो क्षमताएं जो हमें इंसान बनाती हैं, जिन्हें मशीन कॉपी नहीं कर सकती।
सही कहा, जैसे रचनात्मकता, सहानुभूति, पैटर्न पहचानने की कला, कहानी कहना और जीवन में अर्थ खोजना।
किताब का जो पहला हिस्सा है वो इसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार करता है। चैप्टर 1 है राइट ब्रेन राइजिंग।
हाँ, उसमें वो बताते हैं कि कैसे हम कृषि युग से औद्योगिक युग, फिर सूचना युग और अब इस वैचारिक युग में आ रहे हैं।
वो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल करते हैं।
लेफ्ट मतलब लॉजिकल, क्रमबद्ध, और राइट मतलब समग्र, सहज, क्रिएटिव। बिल्कुल। और चैप्टर 2 में वो प्रचुरता, एशिया और ऑटोमेशन का और गहरा विश्लेषण करते हैं, आंकड़ों और उदाहरणों के साथ।
हाँ, उसे पढ़कर थोड़ी चिंता हो सकती है।
हो सकती है, लेकिन पिंक उसे एक अवसर की तरह देखते हैं। और चैप्टर 3 हाई कॉन्सेप्ट हाई टच में वो समाधान बताते हैं।
हाई कॉन्सेप्ट और हाई टच ये क्या है?
हाई कॉन्सेप्ट मतलब वो क्षमता जिससे हम पैटर्न पहचानते हैं, नए अवसर देखते हैं, कलात्मक या भावनात्मक सुंदरता बनाते हैं, अच्छी कहानी कहते हैं और अलग अलग बिखरे हुए आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बना देते हैं, सिंथेसिस।
अच्छा, और हाई टच?
हाई टच है सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना, इंसानी रिश्तों की बारीकियों को जानना, दूसरों को खुशी देना और खुद भी महसूस करना, और जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजना। ये मानवीय जुड़ाव वाली बात है।
यहीं पर पिंक वो MFA वाली बात कहते हैं ना, कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स नया MBA बन सकता है।
हाँ, वो थोड़ी चौंकाने वाली बात लगती है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि MBA बेकार है।
नहीं नहीं,
उनका मतलब है कि आर्ट्स और डिजाइन स्कूलों में जो सिखाया जाता है, क्रिएटिविटी, बड़ी तस्वीर देखना, मानवीय भावनाओं को समझना, वो अब बिजनेस में भी उतना ही जरूरी है जितना पहले सिर्फ एनालिसिस और स्ट्रेटजी था।
मतलब दोनों का संगम चाहिए, शायद इसीलिए अब स्टेम के साथ ए यानी आर्ट्स जोड़कर स्टीम की बात होती है।
बिल्कुल सही, ये संतुलन बहुत जरूरी है। और किताब का दूसरा हिस्सा इन्हीं हाई कॉन्सेप्ट और हाई टच वाली क्षमताओं को और खोलता है। पिंक ने 6 जरूरी इंद्रियां या सेंसेस कहते हैं।
हाँ, 6 सेंस, जिन्हें हमें आज की दुनिया में सफल और संतुष्ट रहने के लिए विकसित करना होगा। हर सेंस पर एक पूरा चैप्टर है और उसमें कुछ मजेदार एक्सरसाइजेस भी हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं उन्हें।
हाँ, पोर्टफोलियो। तो कौन सी हैं ये 6 इंद्रियां?
चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली है डिजाइन। पिंक कहते हैं कि अब चीजों का सिर्फ काम करना काफी नहीं, उनका सुंदर दिखना, अच्छा महसूस कराना भी जरूरी है। फंक्शन के साथ फॉर्म।
बिल्कुल, जिसे पहले फोन सिर्फ बात करने के लिए थे।
हाँ,
अब हम उनका डिजाइन देखते हैं, उनका फील देखते हैं।
हाँ, अपने आप ही देखिए ना, कितनी नए स्टार्टअप्स अपनी पैकेजिंग, अपनी ऐप के डिजाइन पर कितना ध्यान दे रहे हैं।
सही कहा, ये अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन गया है। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, सेवाओं का डिजाइन, अनुभवों का डिजाइन, सब कुछ। दूसरी सेंस है सिम्फनी।
सिम्फनी?
हाँ, कहानी।
हाँ,
आज जानकारी तो बहुत है, गूगल पर सब मिल जाता है, आंकड़े, तथ्य।
हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है।
बिल्कुल। तो पिंक कहते हैं कि सिर्फ तथ्य देना काफी नहीं, उन्हें कहानी में पिरोना, उन्हें संदर्भ और भावना देना, ये ज्यादा असर करता है। हम इंसान कहानियों से ही तो दुनिया को समझते हैं।
सही बात है, एक अच्छा टीचर कहानी सुनाकर मुश्किल चीज आसान बना देता है।
बिल्कुल, या कोई बिजनेस लीडर अपनी कंपनी का विजन एक कहानी के जरिए बताता है। तीसरी सेंस है सिम्फनी।
ये थोड़ी अलग है।
हाँ, ये है बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता, अलग अलग हिस्सों को जो शायद बिखरे हुए लगे, उन्हें जोड़कर कुछ नया बना देना, पैटर्न पहचानना, एनालिसिस से ज्यादा सिंथेसिस पर जोर।
जैसे कोई एंटरप्रेन्योर जो अलग अलग टेक्नोलॉजी को मिलाकर नया बिजनेस बना दे।
हाँ बिल्कुल, या कोई आर्टिस्ट जो अलग अलग मीडियम को मिला दे। अपने यहाँ जिसे जुगाड़ कहते हैं, वो भी शायद सिम्फनी का ही एक देसी रूप है, कम चीजों से कुछ नया बना लेना।
क्या बात है, जुगाड़ को नया सम्मान मिल गया। चौथी सेंस है एम्पथी, सहानुभूति,
यानी दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना, खुद को उनकी जगह रखकर देखना।
पहले से अक्सर सॉफ्ट स्किल कहकर मतलब उतना जरूरी नहीं मानते थे।
हाँ, पर पिंक कहते हैं कि वैचारिक युग में ये एक बेहद जरूरी प्रोफेशनल स्किल है। चाहे आप डॉक्टर हों, मैनेजर हों, टीचर हों, अगर आप दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते तो आप उतने प्रभावी नहीं होंगे। मशीनें सहानुभूति नहीं दिखा सकती।
ये बात तो है। अच्छा, पांचवी सेंस थोड़ी मजेदार है, प्ले, खेल।
हाँ, खेल। पिंक का तर्क है कि हंसी मजाक, खेलकूद, आनंद, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
जब हम खेलते हैं तो हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए आइडियाज आते हैं।
बिल्कुल। कई बड़ी कंपनियां अब अपने ऑफिस में खेलने कूदने की जगह बना रही हैं, पिंग पोंग टेबल, वीडियो गेम्स।
शायद हम सबको अपनी जिंदगी में खेलने के लिए थोड़ा और वक्त निकालना चाहिए।
जरूर निकालना चाहिए। और आखिरी छठी सेंस है मीनिंग, मीनिंग अर्थ।
ये सबसे गहरी मानवीय खोज है, जीवन में उद्देश्य, सार्थकता, कुछ बड़ा मतलब।
हाँ, पिंक कहते हैं कि जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसा कि प्रचुरता वाले समाज में होता है, तो हम गहरे सवालों की ओर मुड़ते हैं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है।
और ये तलाश हमारे फैसलों पर असर डालती है, करियर, हम क्या खरीदते हैं, हम अपना समय कैसे बिताते हैं।
बिल्कुल। लोग अब ऐसी कंपनियों के लिए काम करना चाहते हैं या उनसे सामान खरीदना चाहते हैं जिनका कोई बड़ा उद्देश्य हो, जो सिर्फ पैसा नहीं कमा रही बल्कि दुनिया में कुछ अच्छा भी कर रही हैं।
तो ये थी वो छह इंद्रियां, डिजाइन, स्टोरी, सिम्फनी, एम्पथी, प्ले और मीनिंग। ये सब मिलकर वो हाई कॉन्सेप्ट और हाई टच क्षमताएं बनाती हैं जो भविष्य में जरूरी होंगी।
हाँ, तो अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें, मतलब की टेकअवेज निकालें, तो वो क्या होंगी।
मेरे ख्याल से पहली और सबसे बड़ी बात है कि अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है।
संतुलन बदल रहा है।
हाँ, संतुलन बदल रहा है। सिर्फ तार्किक लेफ्ट ब्रेन स्किल्स से काम नहीं चलेगा, अब रचनात्मक, भावनात्मक राइट ब्रेन स्किल्स का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। और ये तर्क को छोड़ने की बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि दोनों को जोड़ने की, उनका संतुलन साधने की बात है।
हाँ।
दूसरी अहम बात मुझे लगी कि ज्ञान कार्यकर्ता, नॉलेज वर्कर की परिभाषा बदल रही है।
कैसे?
मतलब जो काम पहले पढ़े लिखे लोग करते थे, जैसे रूटीन वाले काम, डेटा एंट्री, बेसिक रिसर्च, शायद कुछ तरह की कोडिंग भी, वो अब या तो ऑटोमेट हो रहे हैं या सस्ते में आउटसोर्स हो रहे हैं।
हाँ, ये तो हो रहा है।
तो हमें उन चीजों पे फोकस करना होगा जो मशीनें नहीं कर सकती या जिन्हें दूर बैठ के करना मुश्किल है, जैसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाना, क्रिएटिव सोचना, गहरे मानवीय रिश्ते बनाना।
बिल्कुल। तीसरा पॉइंट, एक तरह से रचनात्मकता और डिजाइन आम हो रहे हैं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड डिजाइन।
मतलब अब ये सिर्फ कलाकारों या डिजाइनरों का काम नहीं रहा।
नहीं, अब हर किसी को अपने काम में थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ी सुंदरता, थोड़ी कहानी लानी होगी। इंजीनियर को भी सोचना होगा कि यूजर को कैसा महसूस होगा, दुकानदार को भी सोचना होगा कि उसकी दुकान का अनुभव कैसा है।
सही कहा। और चौथा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का बढ़ता महत्व, इमोशनल इंटेलिजेंस,
एम्पथी, रिश्ते संभालना, वो हाई टच वाली बातें।
हाँ, ये अब सफलता के लिए बहुत जरूरी हो गई हैं। अपने आप भारत में तो व्यक्तिगत संबंधों का, सेवा का हमेशा से महत्व रहा है।
हाँ, हमारे कल्चर में ये है।
हाँ, लेकिन अब ये ग्लोबल लेवल पर और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
और पांचवा पॉइंट है अर्थ की तलाश, मीनिंग। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, ये अब एक आर्थिक शक्ति भी बन गई है।
मतलब लोग अब ऐसी चीजें, नौकरियां, अनुभव चुनते हैं जिनसे उन्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक गहरा मतलब भी मिले।
बिल्कुल। अपने अब ये ट्रेंड दिख रहा है, लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, सोशल एंटरप्राइज, ऐसी चीजों की तरफ जा रहे हैं जहां उन्हें लगे कि वो कुछ सार्थक कर रहे हैं।
पिंक की किताब में कई पंक्तियां ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ मुख्य विचारों को दोबारा देखें।
हाँ, जरूर। एक जो बहुत सीधी और दमदार है, भविष्य एक अलग तरह के व्यक्ति का है जिसके पास एक अलग तरह का दिमाग है, रचनाकार और सहानुभूति रखने वाले, पैटर्न पहचानने वाले और अर्थ बनाने वाले।
ये साफ बताता है कि आगे कौन बढ़ेगा। ये सिर्फ स्किल सीखने की बात नहीं, पूरा माइंडसेट बदलने की बात है।
बिल्कुल। और एक और जो मुझे बहुत जरूरी लगी, आज पिछले युग के परिभाषित कौशल, लेफ्ट ब्रेन क्षमताएं आवश्यक हैं लेकिन अब पर्याप्त नहीं है। और जिन क्षमताओं को हमने कभी तुच्छ समझा, राइट ब्रेन गुण जैसे आविष्कारशीलता, सहानुभूति, खुशी और अर्थ, वे तेजी से निर्धारित करेंगे कि कौन फलेगा फूलेगा और कौन पिछड़ जाएगा।
हाँ, ये एकदम साफ कर देती है कि पुरानी स्किल्स अब सिर्फ बेसलाइन है, असली बढ़त नई ज्यादा मानवीय क्षमताओं से मिलेगी।
और ये पंक्ति उस बड़े शिफ्ट को बयान करती है।
हाँ,
हम सूचना युग की तार्किक रैखिक कंप्यूटर जैसी क्षमताओं पर बनी अर्थव्यवस्था और समाज से आगे बढ़कर एक ऐसी अर्थव्यवस्था और समाज की ओर जा रहे हैं जो आविष्कारशील, सहानुभूतिपूर्ण, बड़ी तस्वीर वाली क्षमताओं पर बनी है। वैचारिक युग,
एक वाक्य में पूरी थ्योरी।
हाँ, और एक स्टोरी की ताकत पर, वित्तीय दबावों और कम होती समय सीमाओं की दुनिया में कहानी जैसी सरल चीज सत्य का पात्र हो सकती है, निरर्थक को समझने का एक तरीका हो सकती है।
आज के इस इन्फॉर्मेशन के शोर में ये याद दिलाता है कि एक अच्छी कहानी कैसे भीड़ से अलग निकलकर सीधे दिल और दिमाग तक पहुंच सकती है, चीजों को मायने दे सकती है।
तो ये तो हुई ज्ञान की बातें, अब सवाल यह है कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है?
नहीं, पिंक का मानना है कि हम सब इन 6 इंद्रियों को मजबूत कर सकते हैं। जैसे अपने काम में सोचें, क्या मेरा काम ज्यादातर एल डायरेक्टेड है? क्या उसमें आर डायरेक्टेड चीजें जोड़ने की गुंजाइश है? मान लीजिए आप अकाउंटेंट हैं, तो क्या सिर्फ नंबर देने के बजाय क्लाइंट को उन नंबरों का मतलब समझाती हुई एक सरल कहानी बता सकते हैं?
हाँ, ये अच्छा आइडिया है। या अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो क्या यूजर की परेशानी समझने के लिए थोड़ी और एम्पथी दिखा सकते हैं? कोशिश करें टी शेप्ड प्रोफेशनल बनने की।
टी शेप्ड मतलब
एक फील्ड में गहरी नॉलेज, टी का डंडा, और साथ ही कई दूसरे फील्ड्स को समझने और उनसे जुड़ने की क्षमता, टी का टॉप।
अच्छा, और अगर कोई लीडर है या बिजनेस चला रहा है
तो हायरिंग करते वक्त सिर्फ डिग्री ना देखें, कैंडिडेट की क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, टीम वर्क, एम्पैथी, ये सब भी परखें।
हाँ, और कंपनी कल्चर ऐसा बनाए जहाँ नए आइडियाज, एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक कि खेलने को भी बढ़ावा मिले।
बिल्कुल, और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सिर्फ यूजफुल नहीं बल्कि आकर्षक और इमोशनली कनेक्ट करने वाला बनाए।
शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत बदलाव की जरूरत लगती है।
हाँ, वहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ रटने और एग्जाम पर फोकस करने के बजाय बच्चों को सवाल पूछना, अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ना, सिम्फनी, मिलकर काम करना, एम्पैथी, और अपनी बात क्रिएटिव तरीके से कहना, स्टोरी डिजाइन सिखाना होगा।
वही स्टीम वाली बात, आर्ट्स को भी उतनी ही इज्जत देनी होगी जितनी साइंस और टेक को।
सही कहा। और पर्सनल लेवल पर,
पिंक की किताब में वो पोर्टफोलियो अभ्यास है, वो बड़े मजेदार है। जैसे डिजाइन के लिए अपने आसपास की चीजों के डिजाइन पर ध्यान देना शुरू करें, अच्छा क्या है, बुरा क्या है।
हाँ, या स्टोरी के लिए अपनी लाइफ के किस्से कहानी की तरह लिखें। सिम्फनी के लिए कोई एकदम नया शौक पाल लें जो आपके काम से बिल्कुल अलग हो।
एम्पैथी के लिए वॉलंटियर करें या किसी और के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करें। प्ले के लिए हंसने और खेलने के बहाने ढूंढें।
और मीनिंग के लिए थोड़ा रुककर सोचें कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि भविष्य संतुलन का है, बैलेंस का, लॉजिक और इमोशन का, एनालिसिस और इंट्यूशन का, काम और खेल का।
हाँ, और ये सिर्फ करियर का नुस्खा नहीं है बल्कि एक ज्यादा संतुष्ट जीवन जीने का तरीका भी है।
और मुझे ये बात सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है कि जिन चीजों को हम अक्सर फालतू या सॉफ्ट समझते थे, कहानी कहना, खेलना, दूसरों को समझना, वो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं।
खासकर आज जब मशीनें इतनी स्मार्ट हो रही हैं, हमारी इंसानियत ही हमें अलग बनाएगी।
बिल्कुल, एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटना।
तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
हाँ जरूर।
आज जब AI तेजी से लॉजिकल काम संभाल रहा है, तो पिंक की बताई इन 6 मानवीय इंद्रियों, डिजाइन, स्टोरी, सिम्फनी, एम्पथी, प्ले और मीनिंग में से वो कौन सी एक क्षमता है जिसे आप अपने लिए सबसे जरूरी मानते हैं और क्यों? किसे आप सबसे पहले डेवलप करना चाहेंगे?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।